I want to sing very old song.
नमस्कार, आप सुन रहे हैं अर्थसूत्रा की कहानी मछली। आज का एपिसोड है छोटे से द्वीप के मोटा भाई। पिछले एपिसोड में हमने देखा हरि की बचत से हमारे सरल द्वीप में पूंजी का निर्माण कैसे होता है, और अमर और प्रेम ने बिना आत्म बलिदान के हरि की जमा पूंजी का उपयोग कर अपने जीवन का स्तर कैसे बढ़ाया। आगे देखते हैं वे आपदाओं से कैसे जूझते हैं। विकास, अमर और प्रेम अब दिन की दो दो मछली पकड़ के बड़े आराम से जीते थे। दोनों मिलके दिन की दो मछली तो बचा ही लेते थे, और उनके पास दिन में काफ़ी समय भी बचने लगा। वे अपने खाली समय में आराम भी करते और बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की खोज में लगे रहते। ऐसे ही एक दिन अपने जाल से मछली पकड़ते पकड़ते प्रेम को ख्याल आया, क्यों ना हम बड़ा जाल बनाएं। प्रेम ने अमर के साथ अपना आइडिया शेयर किया, और अमर को ये आइडिया पसंद तो आया, लेकिन बोला, हम इससे बड़ा जाल कैसे संभालेंगे, हमारे हाथ ही नहीं आएगा। तब प्रेम भी सोचने लगा। अमर और प्रेम दिन रात अपने इस बड़े जाल को कैसे बनाएं, इसकी सोच में डूबे रहे। इस बड़े जाल को बनाने के लिए अमर और प्रेम को बहुत सारे और नए नए साधनों की ज़रूरत पड़ेगी, और बड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद अमर, जो कि थोड़ा आलसी भी था, बोलता है, यार प्रेम, ये बड़े जाल का आइडिया तो सही है, लेकिन जब हम ऐसा जाल बना ही रहे हैं तो हमने ऐसा जाल बनाना चाहिए जिसमें हमें मछली पकड़ने जाना ही ना पड़े। ये सुन, अमर रेत में कुछ बांबू गाड़ के प्रेम से कहता है, हम समुद्र में इस तरह एक फ्रेम के साथ जाल का घेरा बना के उसमें एक खिड़की छोड़ दें जो सिर्फ अंदर की तरह खुले, तो इससे मछली अंदर तो आ पाएगी लेकिन बाहर नहीं जा पाएगी। प्रेम थोड़ा सोच के बोलता है, अमर यार, ये तरकीब तो काम कर सकती है, लेकिन इसके लिए हमें बेहतर और मजबूत साधन की ज़रूरत पड़ेगी। तब अमर कहता है, ये बांबू और वेल काफ़ी मजबूत होती हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमर और प्रेम ने कुछ दिन कड़ी मेहनत की और एक हफ्ते जितनी बचत इकट्ठा कर ली, फिर दोनों जाल बनाने में लग गए। बेहतर मछली का जाल। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद बड़ा मछली का जाल आखिरकार तैयार हो ही गया। दरिया किनारे एक बड़े पत्थर के पास एक छोटी खाड़ी थी जहाँ पानी शांत रहता था। वहाँ अमर और प्रेम ने अपने इस नए जाल को लगाया। जाल लगाने के बाद वे दोनों बड़े उत्साह से उस पत्थर पर बैठे अपने इस नए आविष्कार की परख ले रहे थे। दिन ढलने लगा। अमर और प्रेम अपने इस नए जाल को लेकर बड़े चिंतित थे, क्योंकि अब तक इसमें एक भी मछली नहीं आई। दिन ढल भी गया और वे दोनों ने सुबह से कुछ इस आशा में नहीं खाया कि उनका जाल काम कर जाएगा। उनके पास अब सिर्फ एक ही मछली बची थी। रात में अमर और प्रेम ने इस मछली को बांट के खा लिया। वे भूखे ज़रूर थे, लेकिन निराश ज़्यादा थे कि उनका ये बड़ा जाल काम नहीं किया। रात भर वे अपने इस जाल को बेहतर कैसे बनाएं, उसकी चर्चा करते रहे। अगले दिन प्रेम सुबह जल्दी उठ गया और सबसे पहले अपने जाल को देखने दौड़ा। जैसे ही वो अपने जाल के पास पहुंचा, उसने देखा कि जाल में चार चार मछलियां तैर रही थी। दौड़ता दौड़ता प्रेम अमर को उठाने गया। अमर, अमर, उठ जा मेरे यार, देख अपना जाल काम कर गया, चार चार मछलियां पकड़ी हैं हमारे जाल ने, उठ जा अमर। अमर उठता है और वे दोनों दौड़ते दौड़ते अपने जाल को देखने पहुंचे। जाल में मछलियां देख दोनों खुशी से नाचने लगे। प्रेम, ये तो कमाल हो गया, हमारा जाल काम कर गया, ये तो जब हम सोते हैं तब भी मछली पकड़ता है। हाँ अमर, छोटी मोटी मरम्मत के अलावा हमें तो दिन की जितनी मछलियां चाहिए उतनी हम आराम से ले सकते हैं, बाकी हम बचा सकते हैं। दोनों हाथ पकड़ नाचने लगे। आज वे भरपेट खाना खा पाएंगे। जाल की मछलियां पकड़ के वे वापस अपने घर की ओर खुशी खुशी जाने लगे। अमर कहता है, प्रेम अब हमारे पास बड़ा जाल है, जाल में बहुत मछलियां भी हैं, भरपेट खाने को है, घर है, समय है, अब हम बड़े आराम की जिंदगी जी पाएंगे। हाँ अमर, हमें अब जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, प्रेम बड़ी खुशी से कहता है। अच्छा नहीं, एक अजीब सी आवाज ने पूछा। ये था इस द्वीप का लोकल कौवा मनी। हैरान अमर और प्रेम रुके और जैसे ही अमर ने मनी को देखा गुस्से से बोला, तुम मछली के बिजनेस के बारे में क्या जानते हो मनी, कौवा कहीं का। मछली के बिजनेस के बारे में तो नहीं, लेकिन मैं आपदाओं और दुर्घटनाओं के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ चंपू, मनी ने तुरंत जवाब दिया। मनी बड़ा बुद्धिमान था, आगे वो हमें दो तरह की आपदाओं से परिचित कराता है, सुनते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, भगवान की करनी यानी एक्ट्स ऑफ गॉड। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ या भूकंप अगर आता है तो ये द्वीप की पूंजी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और द्वीप की अर्थव्यवस्था को तितर बितर कर सकता है। अगर बाढ़ आ जाए तो वो अमर और प्रेम के बड़े जाल को नष्ट कर देगा। यह उस पूंजी को नष्ट कर देगा जिसे अमर और प्रेम ने कड़ी मेहनत के साथ बनाया है और वे अपनी सारी बचत भी खो सकते हैं। लेकिन जब हमें बुरे दिन जैसे मंदी या डिप्रेशन से जूझना पड़ता है बिना कोई प्राकृतिक आपदाओं के, तो इसका कारण मानव निर्मित होता है। अप्राकृतिक आपदाएं, मानव जाति के पूरे इतिहास में अप्राकृतिक आपदाएं गैर उत्पादक राजनेताओं द्वारा प्राकृतिक आर्थिक व्यवस्था यानी नेचुरल इकोनॉमिक ऑर्डर में दखल देने से हुई हैं, सारे समाज की उपज चुरा के कुछ लोगों के भले के लिए। इतिहास के हर राजनेता ने कहा है, आप हमें वोट दो हम अमीरों से लेके गरीबों को देंगे, लेकिन राजनेताओं से गरीबों को कभी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उनकी स्थिति कभी बदली हो। आज हम ये समझते हैं कि महंगाई और टैक्स किसी भी अर्थव्यवस्था का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जैसे शेयर बाजार और बिजनेस की तेजी और मंदी का चक्कर। आगे कहानी में हम अलग अलग परिदृश्यों यानी सिनारियोज द्वारा ये कितना सच है इसका पता लगाएंगे। आगे सुनते हैं। उपभोक्ता उधार यानी कंज्यूमर लोन। मान लीजिए कि अमर और प्रेम ने जाल के निर्माण के बजाय हरि से छुट्टी मनाने के लिए उधार मांगा होता। अमर अगर शिकायत करता हरि से, हम थक गए हैं और हमें आराम की ज़रूरत है, हम दोनों को दो दो मछलियाँ उधार दे दो ताकि हम कुछ दिनों के लिए समुद्र तट पर बैठे बैठे आराम कर सकें। हरि तो चिंतित होकर पूछेगा, तुम दोनों को दो दो मछलियों का ब्याज लगेगा, ये तुम कैसे चुकाओगे?
हम और मेहनत कर लेंगे, सयाने अमर ने जवाब दिया, और कई दिनों तक बिना खाए भी रह लेंगे, प्रेम ने भी कह दिया।
अपना उधार चुकाने के लिए तुम दोनों को बहुत दिन भूखा रहना पड़ेगा, हरी कहता है, क्योंकि उसे पता था कि मछलियों को पकड़ना कितनी मेहनत का काम है।
लेकिन हमें छुट्टी की बहुत ज़रूरत है,
अमर रोने लगा। तब हरी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, देखो तुम दोनों को क्यों उधार चुकाने के लिए कई दिनों तक भूखे रहना है, जबकि बिना उधार के तुम केवल दो दिनों के लिए भूखे रह के अपनी छुट्टी के लिए खुद बचा सकते हो। मुझे एक कारण दो उधार देने के लिए, हमें छुट्टी अभी ही लेनी है, अमर और प्रेम दोनों जिद लगा के रोने लगते हैं। बाप रे, ये राइट नाउ जनरेशन, सब कुछ अभी ही चाहिए, हरि अपना सर हिलाने लगता है और शांति से समझाता है। देखो मैं तुम्हें ये उधार देने से इनकार करता हूँ, जिससे केवल मुझे ही लाभ होगा और तुम्हारे लिए एक बड़ा बोझ बन जाएगा, और वैसे अगर मैं तुम्हें ये उपभोक्ता उधार यानी कंज्यूमर लोन देता हूँ तो मेरे पास उपजाऊ कार्यों के लिए उधार देने के लिए कम बचेगा, और तुम अपना उधार नहीं चुका पाए तो मैं अपनी सारी बचत खो दूंगा। अमर और प्रेम बुरा भला कह के हरी की कुटिया से नाराज होकर चले गए।
आगे देखते हैं, क्या हरि क्रेडिट बढ़ा सकता है? राजनेता और बैंकर अक्सर विस्तार और लोन में ढील यानी एक्सपांशन और ईजिंग ऑफ क्रेडिट की बातें करते हैं, लेकिन क्या कोई जब चाहे ऐसा कर सकता है? क्या कोई वास्तव में अधिक धन उधार के लिए उपलब्ध करा सकता है अपनी जादुई छड़ी हिला के? जाहिर है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। कोई भी जो उसके पास ना हो उसे उधार कैसे दे सकता है? ऐसा करने का कोई भी प्रयास छल और धोखाधड़ी है। चलिए देखते हैं कि द्वीपवासी इससे कैसे जूझते हैं। अगर हरि, जिसकी सारी बचत सिर्फ 4 मछलियां हैं, एक कागज़ के टुकड़े पे 10 मछली लिख के अमर और प्रेम से कहता है, तुम जब भी भविष्य में ये कागज़ मुझे लौटाओगे मैं तुम्हें 10 मछली दूंगा। अरे हरि, किससे मजाक कर रहे हो? तुम्हारी टोकरी में तो केवल 4 ही मछलियां हैं। अमर और प्रेम तो तुरंत कहेंगे। द्वीप में कितना उधार दिया जा सकता है ये द्वीप की टोटल मछली द्वारा सीमित है, ये तो जाहिर सी बात है। उपभोग के लिए आपातकालीन उधार यानी इमरजेंसी लोन। हरि ने बड़ी होशियारी से अमर और प्रेम के छुट्टी यानी उपभोग का उधार तो टाल दिया, लेकिन 1 हफ्ते बाद अमर और प्रेम बीमार हो जाते हैं और मछली नहीं पकड़ पाते। दया भाव से हरि अमर और प्रेम को उपभोक्ता उधार यानी कंज्यूमर लोन अपनी बचत से दे देता है, ताकि अमर और प्रेम दूसरे दिन काम करने के लिए खा सके और जी सके। शुक्रिया हरि, आभारी प्रेम ने कहा। हम कड़ी मेहनत और बचत करके तुम्हारा ये उधार चुका देंगे, अमर ने भी वादा किया। पर हरि ने अगर छुट्टी का उधार दे दिया होता तो वो अमर और प्रेम की मदद नहीं कर पाता। अब तूफान की बारी। अब ये सोचिए कि अगर हरि ने वो पहला छुट्टी वाला बेकार उधार दे दिया होता, यहाँ अमर और प्रेम समुद्र तट पर बड़ी मस्ती से द्वीप की बचत को उड़ा रहे हैं और तभी तूफान आ जाता है। ये सूर्य की लाइट किसने बंद की? समुद्र तट पर लेटे लेटे अमर कहता है। तभी आवाज आती है, अमर भाग, गुफा की तरफ भाग, तूफान आ रहा है। प्रेम दौड़ते हुए चिल्लाता है, तूफान के कारण इस द्वीप पर मछली पकड़ना असंभव हो जाता है। अमर और प्रेम अब हरि के पास जाते हैं और पूछते हैं, अरे हरि, क्या तुम्हारे पास और मछली है? ना, मेरे पास कुछ नहीं बचा, सारी बचत तुम दोनों की छुट्टी पे बर्बाद हो गई, हरि ने कहा। कई दिनों के लिए अमर, प्रेम और यहाँ तक कि हरि भी मछली नहीं पकड़ पाया और उसे भी भूखा रहना पड़ा। उनकी ऐसी कमज़ोर स्थिति में बीमारी होना भी बड़ा आसान है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि द्वीप समाज उपभोक्ता उधार यानी कंज्यूमर लोन द ग्रेट वेस्टर की वजह से पूरी तरह नष्ट हो सकता है। बचत करने वालों की जीत। अब ये देखते हैं कि हरि ने अगर छुट्टी वाला उधार ना दिया होता तो उसके पास अपनी मछली की बचत यानी धन उपलब्ध होता और वो तूफान से झेल पाता और उसके साथ अमर और प्रेम भी। सुनते हैं, तूफान से बच के अपनी कुटिया में बैठा अमर कहता है, हम कम खाने पे जी सकते हैं क्योंकि किसी तरह की मेहनत नहीं कर रहे। प्रेम भी राजी होके कहता है, शुक्र है कि हरि ने अपनी बचत संभाल के रखी और हमें छुट्टी के लिए नहीं दी, वरना अभी हमें ऐसे तूफान में जोखिम उठाना पड़ता मछली पकड़ने के लिए। हम ये तूफान को आराम से गुजार पाएंगे। जब ऐसी प्राकृतिक मंदी आती है तो बचत समाज के जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। सबक। इस कहानी से हम 2 सबक ले सकते हैं। पहला, उपभोग के लिए उधार यानी कंज्यूमर लोन बचत को बर्बाद करता है। दूसरा, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट या पूंजी के लिए उधार यानी कैपिटल लोन ज़्यादातर बचत को बढ़ाता है। बचत और कंज्यूमर डेट के बीच जीवन और मृत्यु जैसा अंतर है। पूंजीगत उधार का जोखिम यानी कैपिटल लोन रिस्क। ये तो स्वाभाविक है कि सभी निवेश और कैपिटल लोन काम नहीं करते, कुछ में नुकसान भी होता है। उदाहरण, हरि ने अमर और प्रेम को जाल बनाने के लिए उधार दिया हो,
लेकिन वह अगर जाल बनाने में असफल हो तो हरी अपनी बचत खो देगा। दूसरी ओर अगर हरी अपनी बचत खुद ही जाल बनाने के लिए करे पर अमर और प्रेम हरी का जाल किराए पे लेने से इनकार कर दे, तब भी हरी की बचत बेकार हो जाएगी। ऐसे निवेश समाज की बचत को कम ज़रूर करते हैं, लेकिन जो निवेश काम कर जाते हैं वो नुकसान से कई गुना ज़्यादा भरपाई कर जाते हैं। तो बड़े सबक। पहला, कंज्यूमर लोन पूंजीगत परियोजनाओं यानी कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए उपलब्ध धन को कम करता है और इसलिए यह समाज के जीवन स्तर और आर्थिक सुरक्षा को केवल कम कर सकता है। इसका उदाहरण हमने अभी सुना। दूसरा, सरकार की योजनाओं द्वारा खराब क्वालिटी और भारी जोखिम वाले लोन को बढ़ावा देना समाज के लिए हानिकारक होता है। ये कंज्यूमर डेट यानी उपभोग के लिए उधार देने के बराबर है। उदाहरण, सरकार हरी से कहती है, जाओ तुम बिंदास अमर और प्रेम को भारी जोखिम वाले लोन दे दो। सरकार है ना, सरकार गारंटी देती है कि अगर तुम्हारा लोन बेकार हो जाए तो सरकार तुम्हें बचा लेगी। तभी मणि द्वीप का होशियार कौवा बोलता है, लेकिन सरकार के पास तो कोई बचत नहीं है। सरकार केवल लोगों की बचत और पूंजी पर छापा मार सकती है और उन लोगों को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचती है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने आत्म बलिदान से अपनी पूंजी जमा की हो। इससे तो मैं भी वाकिफ हूँ और शायद आप भी होंगे। जैसे आजकल हमें ये अक्सर सुनने में आता है कि सरकार ने फलाना बैंक को इतने करोड़ रुपए दिए बैंक को डूबने से बचाने के लिए, जिस बैंक ने कई लोगों को खराब और भारी जोखिम वाले लोन दिए। क्या बैंक ने आपके लोन चुका दिए? क्या आप किसी का ऐसा लोन चुकाओगे? चलिए आगे सुनते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू, गुंडे तशरीफ लाए। अब मान लीजिए कि अमर और प्रेम छुट्टी के लिए हरी से लोन पर बातचीत कर रहे हैं। तभी मोटा भाई द्वीप के धमाकेदार गुंडे वहां पहुंच जाए। क्यों मित्रों, क्या चल रहा है यहाँ? मोटा भाई अमर और प्रेम से पूछता है। अमर कहता है, हरी हमें छुट्टी के लिए उधार देने से मना कर रहा है, वो कंजूस है। प्रेम शिकायत करता है, वो लालची है, वो हमें बहुत ज़रूरी छुट्टी लेने में सहायता करने से इनकार कर रहा है। अमर रोते रोते मोटा भाई से शिकायत करता है, मोटा भाई हमारे चौड़ी छाती के थे और किसी से नहीं डरते थे। वो चले हरी की ओर, कॉलर पकड़ के हरी के चेहरे पे भौंकते हुए बोले, क्यों बेटा हरी, तुम्हारे पास चार चार मछलियाँ हैं जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं, तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है मेरे मित्रों को उधार देने में? चुपचाप अमर और प्रेम को तुम उधार दे दो। बेचारा हरी मोटा भाई की धमकी से डर के अपनी बचत अमर और प्रेम को दे देता है, वरना मोटा भाई तो उसे पीट के उसकी मछली अमर और प्रेम को वैसे भी दे देते। क्यों भाइयों और बहनों, किसी और को लोन चाहिए क्या? मोटा भाई बड़े संतुष्ट थे कुछ भक्त पाकर। यह हरी बड़ा परेशान था, मेरी बचत वास्तव में अब सुरक्षित नहीं है, ये मोटा भाई के रहते, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, आत्म बलिदान कर कर के बचत करूं, पूंजी जमा करूं और ऐसी दादागिरी से सब कुछ खो दूं, क्या फ़ायदा इसका? उदास हरी रोने लगा और अब उसे भी रोज़ मछली पकड़नी पड़ेगी। अपनी सारी पूंजी मोटा भाई की दादागिरी को खोने के बाद जब तक मोटा भाई रहेंगे तब तक हरी ना पूंजी जमा कर पाएगा ना ही आराम की ज़िंदगी बिता पाएगा। आज भारत में बैंकों और लोन देने वाली संस्थाओं पर राजनेताओं का प्रभाव कुछ मोटा भाई की तरह ही चल रहा है। जैसे क्रेडिट यानी लोन के असमान उपयोग को प्रोत्साहित करके बचत को बर्बाद किया जा रहा है। समाज में खर्चे को बढ़ावा देना, बचत के फायदों को कम या पूरी तरह से मिटा देना और बचत करने वालों को हतोत्साहित करना। आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने देखा कैसे अमर और प्रेम एक बड़ा जाल बनाने में सफल होते हैं, लोन के दो प्रकार, दो तरह की आपदाएं और बचत करने वालों की जीत। अगले एपिसोड में हम देखेंगे इस सरल द्वीप की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ती है। खतरा भी है, लेकिन द्वीप के लोग खतरे से बचते हैं और नए द्वीप वासियों से भी मिलेंगे। अब वक्त आया है इस एपिसोड के सवाल का। सवाल है, कंज्यूमर लोन लेना क्यों हानिकारक है? इसका जवाब हमें आप हमारे ट्विटर पे भेज सकते हैं और सबसे बढ़िया उत्तर भेजने वाले को 1000 सतोशी का इनाम दिया जाएगा, जिसे हम ट्विटर पे घोषित करेंगे। सतोशी क्या होता है अगर नहीं जानते तो डग डग गो करिए। शो नोट्स में इसकी जानकारी की भी लिंक छोड़ी है। आपको ये कहानी अगर पसंद आई तो खूब शेयर करिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और रिव्यू ज़रूर छोड़िएगा अपने पसंदीदा पॉडकास्ट एप्लीकेशन पे। हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा आपके लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाने में। अगर आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो इस एपिसोड की प्रतिलिपि यानी ट्रांसक्रिप्ट आपको हमारी वेबसाइट www.arthasutra.org पे मिलेगी। अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं तो हमें आप हमारे ट्विटर पे ज़रूर लिखिए। अगली बार तक अलविदा।